ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बातें देखें तो हमने एक बात जो समझी, अपनी पहचान तो की ही, परमात्मा की पहचान की और समय के सच को पहचाना। साथ ही एक बात सामने आई कि अगर हम आत्मा की बात करें, परमात्मा की बात करें, प्रकृति की बात करें तो यह अविनाशी और अनादि है। इसका अभी तक हम ये जब बातें सुनते थे तो हमें समझ में नहीं आता था कि कैसे हम इसको लें, लेकिन इस पूरी श्रृंखला में ये बात समझ में आई कि कैसे तर्क की कसौटी पर अगर हम उसको कसते जाते हैं तो वो खरी उतरती गई बातें और सच सामने आता जाता है। लेकिन जब सच सामने आता है, जब नया ज्ञान मिल रहा होता है, जब एक नई बात हमारे सामने आ रही होती है, बहुत से सवाल भी जुड़ जाते हैं। तो उन्हीं सवालों को लेकर जो आपके जीवन से जुड़े हैं, जो पूरा ज्ञान हमने अभी बांटा है आपके साथ पिछली कुछ कड़ियों में, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें आपके दिल में उठी हैं, उन्हें लेकर आज हम फिर इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और हमारा सौभाग्य, हमारे साथ खास माउंट आबू से आई हैं शीलू बहन, बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।
कुछ सवाल जो हैं वो लोगों के बहुत ज्यादा हैं। जब हम ईश्वर को सर्वव्यापी की बात कही जाती थी कि परमात्मा हर कण में है, परमात्मा हर जगह है, परमात्मा जो है वो हर प्राणी में है, हर मनुष्य में है, तो ये हमें समझ में आया कि हर एक की अपनी आइडेंटिटी है एंड इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आज आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि बहुत से लोगों के ये सवाल हैं कि हमारे लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है स्वीकार करना, क्योंकि अभी तक हम इसी बात को जीते आए हैं कि सब में हमें परमात्मा को देखना है। तो क्या फर्क होता है उसको देखने में और उसके होने में?
एक होता है होना और दूसरा होता है देखना। तो होना अर्थात उसको उसी रूप में मानना, और देखना अर्थात एक भावनात्मक स्थिति है। हम भी यही कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं शिव बाबा हमारे साथ है, हम अकेले कभी नहीं हैं, हमेशा शिव बाबा को अपने साथ ही रखते हैं। तो ये एक बहुत ऊंची भावना है। तो इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी मानना, ये भावना बहुत ऊंची है और ये रखनी भी चाहिए। जैसे मीरा का मिसाल हम देखते हैं कि मीरा ने कहा, जहाँ देखती हूँ गिरधर तू ही तू, तू ही तू, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो वो श्री कृष्ण की दीवानी थी और वो श्री कृष्ण को सब जगह देखती थी। वास्तव में ये भावनात्मक स्थिति बहुत ऊंची थी, क्योंकि वो साक्षात्कार करती थी श्री कृष्ण का सब जगह। और इसका हम कारण ये बताते कि वो तो इनकी आंखों में समाया हुआ था, क्योंकि जिसके साथ प्यार होता है उसके जैसे आंखों में वो समाया हुआ होता है।
कई बार ये भी कहा जाता है देखते हैं, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर जैसा।
हाँ, वो तो है ही,
तो वही उसी तरह।
हाँ, तो श्री कृष्ण ही उसके लिए सब कुछ था। तो वास्तव में वो जैसे उनकी आंखों में समाया हुआ था, तो सब जगह देखती थी। तो जिससे प्यार होता है या तो उसको आंखों में समाओ या तो दिल में समाओ। तो दिल में भी हम कहते ईश्वर का स्थान है, क्योंकि परमात्मा से हमको बहुत प्रेम है। तो जिससे प्रेम होता है ये दो मुख्य स्थान है जरूर। तो परमात्मा सर्वव्यापी है, ये भावना क्यों जागी? क्योंकि परमात्मा का या अपने इष्ट का अनेक भक्तों को साक्षात्कार हुआ, तो साक्षात्कार के कारण उन्होंने कह दिया, जहां देखता हूं वहां तू ही तू, या जहां देखती हूं वहां तू ही तुम। ये एक भावना के आधार पर सर्वव्यापकता का सिद्धांत संसार में फैला। दूसरा कारण ये था कि मनुष्य भगवान से डरे। तो जिस प्रकार शास्त्रों में है कि भाई भगवान सब जगह है, वो देख रहा है
वो,
इसलिए कोई भी पाप मत करो। तो भगवान देख रहा है ये पाप नहीं करो, ये भावनात्मक स्थिति सब में बिठाई, क्योंकि भगवान देख रहा है तो मुझे कुछ पाप नहीं करना है। तो ये बहुत ऊंची भावना है कि परमात्मा मुझे देख रहा है। परंतु केवल भगवान से हम डरे, यही वास्तव में लक्ष्य नहीं था। भावना इनसे ऊंची थी कि उनसे प्रेम है इसलिए उनको सब जगह देखे, पर पीछे देखा कि प्रेम तो कम होता गया और मनुष्य फिर भी पाप कर्म करते रहे तो इसलिए कम से कम डरे तो सही, अगर प्रेम नहीं है
बिल्कुल तो दूसरी तरफ जगाई चिरुभन होता है ये कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो गया आगे चल के तो।
बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। फिर इसके बाद फिर तीसरी धारणा क्या आई कि वही सब कुछ कर रहा है। अब वही सब कुछ कर रहा है तो आज दुनिया में इतना पाप भ्रष्टाचार दुराचार अत्याचार अनाचार ये जो सब कुछ जो नेगेटिव आचरण चल रहा है वो भी फिर ईश्वर कर रहा है। फिर कहते कि हमारे पाप कर्मों का वो दंड देता है तो कर्म भी वही कर रहा है फिर दंड भी वही दे रहा है फिर भोग भी फिर वही रहा होगा जो कर्म करेगा वही तो भोगेगा। तो क्या मनुष्य इतना कंफ्यूज हो गया है जिसको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर सत्य क्या है। फिर यहाँ तक पहुंच गए कि ये हाथ ऊपर उठता है ईश्वर की शक्ति से उठता है तो ये ईश्वर की शक्ति से उठता है और किसकी हत्या की तो ईश्वर की शक्ति ने हत्या की। अब वास्तविकता कुछ और है भावनात्मक स्थिति कुछ और है। वास्तविकता तो यही है कि हम ईश्वर के घर से आए हैं ईश्वर के घर जाना है तो ईश्वर का घर जरूर कहीं और है जहां से हम आत्माएं आई है वहीं हमें जाना है। तो परम धाम हम आत्माओं का घर है वहीं से हम आत्माएं इस सृष्टि मंच पर आई है तो परमात्मा का घर भी वहीं है जहां से वो भी सृष्टि पर आते हैं अपने वायदे अनुसार कि जब जब संसार में धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूं। तो इसलिए भावनात्मक स्थिति रखना ये बहुत ऊंची बात है परंतु उसको विवेक से समझ करके परमात्मा को परम धाम निवासी समझकर उन्हें वहां याद करना और मैं भी उसी धाम की वासी हूं ये समझ करके अपने धाम को याद करना ये और बात है। तो राजयोग में हम यही बताते हैं कि आप आत्मा भी परम धाम की वासी हो परमात्मा भी परम धाम के वासी हैं मन बुद्धि से परम धाम चले जाओ और महसूस करो अखंड ज्योति के वह तत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा परमात्मा के सम्मुख हूँ।
ये हम देखते हैं परम धाम
जी बिल्कुल यही परम धाम किसका स्वरूप है परमात्मा परम धाम के वासी हैं हम आत्माएं भी वहीं के वासी हैं उनके साथी हैं उनके साथ रहते हैं और हम इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए आते हैं। परमात्मा हम आत्माओं की तरह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते और जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण फिर जो जन्म मरण के चक्र के साथ जो और चक्र जुड़े हुए उनमें भी नहीं आते जैसे कर्म फल ये भी चक्र है उसमें भी नहीं आते। कर्म फल के साथ चक्र जुड़ा हुआ है पाप और पुण्य का उसमें भी नहीं आते। तो पाप पुण्य के चक्र में नहीं आते तो पाप पुण्य के साथ चक्र जुड़ा हुआ है दुख और सुख तो उसमें भी नहीं आते। दुख सुख के साथ चक्र जुड़ा हुआ है नरक स्वर्ग दिन रात हानि लाभ जय पराजय परमात्मा उनसे भी परे है।
वही ना कि हमने वो तीन बात तो की कि जो अनादि और अविनाशी है प्रकृति पुरुष प्रकृति की बात की आत्मा की बात की और परमात्मा की बात की लेकिन इन दोनों में परिवर्तन तो होता जाता है। परमात्मा का ना स्वरूप बदलता है ना कोई भी
तीनों में अंतर ये है। एक तो जो मुख्य बात है कि तीनों ही अनादि अविनाशी है लेकिन अंतर भी बहुत है। परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे पर आत्माएं चक्र में आती है इसलिए ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए आत्माएं पुण्य आत्मा पापात्मा धर्मात्मा महात्मा बनती क्योंकि कर्म और फल के चक्र में भी आती है और प्रकृति के साथ इनका संबंध है संघ है आत्माओं का इसके कारण से आत्मा में कोई बाह्य परिवर्तन नहीं आता लेकिन आत्मा सतो रजो तमो स्थिति में तो आती ही है स्मृति और विस्मृति के चक्र में तो आती ही है। इस कारण से आत्मा को फिर से जागृति दिलाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। इससे तीनों का कार्य अपना अपना है
बिल्कुल
इसलिए तीनों ही सत्य है। आत्मा भी सत्य है परमात्मा तो सत्य है ही है और प्रकृति भी सत्य है परंतु प्रकृति में जो एक विशेषता है कि वो परिवर्तनशील है इसलिए अध्यात्म ने प्रकृति को असत्य कह दिया कि जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम इल्यूजन कह दिया। वास्तव में सत्य है क्योंकि अविनाशी है परंतु परिवर्तनशील है इसलिए सत्यता का एक गुण जरूर है कि वह अविनाशी है पर जो दूसरा गुण चाहिए अपरिवर्तनशील वो नहीं है इसलिए प्रकृति को मिथ्या कह दिया। और आत्मा प्रकृति की तरह वो उस रूप से नहीं जलती कटती सूखती या परिवर्तन आता, इस हिसाब से आत्मा सत्य है। पर आत्मा सतो रजो तमो स्थिति में जरूर आती है क्योंकि खुद को भूल जाती है। इसलिए तीनों में अंतर है, पर एक समानता जरूर है कि वो दो तीनों ही अनादि और अविनाशी है।
बिल्कुल।
तो क्या है, जब हम ये बात समझ जाते हैं तो प्रकृति का अपना कर्तव्य है, आत्मा का अपना कर्तव्य है, परमात्मा का अपना कर्तव्य, ये समझ जाते हैं
तो
ये सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है।
इनफैक्ट अगर हम भाव से देखते हैं, बहुत अच्छी आपने बात बताई शुरू में कि अगर भाव को देखें तो भाव में हमें सर्वव्यापी परमात्मा का होना, इनफैक्ट उससे प्यार भी करेंगे। अगर हम ये सोचें कि अगर सामने वाले में परमात्मा है
जी,
अगर हमारे पास ये थॉट रहता है तो हम उनके साथ कभी गलत नहीं करना चाहते।
और इनसे भी और ऊंची बात होगी, ये महसूस करेंगे कि परमात्मा की शक्ति हमें हर कार्य करा रही है। तो अगर परमात्मा की शक्ति हमसे सब कार्य करा रही तो मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूं, ये नहीं कि गलत काम हो जाए कि ये तो परमात्मा की शक्ति है, तो उल्टा हो गया।
बिल्कुल।
क्योंकि देखिए, एक तरफ जैसे ग्रंथ में आता है, करण करावन आपे आप मानुष के नाही हाथ। अब ये बहुत ऊंची धारणा है कि हम सदा ये सोचे मैं तो निमित्त हूँ, वो ईश्वर ही करा रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जो मनुष्य के अंदर अभिमान आता है कि मैंने किया, वो अभिमान खत्म हो जाएगा। पर दूसरी ओर अगर हम गीता को लें तो गीता में आता है, कर्मणे वाधी का रस्ते मा फलेषु कदाचरम। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, फल मुझ पर छोड़ दो। अब ये दोनों का आपस में कनेक्शन है कि कर्म करने वाली आत्मा है परंतु वो मुझसे करवा रहा है, ये सोच करके फल उन पर छोड़। ये बहुत दोनों को हम मिला सकते हैं, नहीं तो दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें हैं, परंतु हम दोनों को मिला सकते हैं कि मैं तो निमित्त हूँ। फिर अगर सफलता मिली तो हमें अभिमान नहीं आएगा कि मैंने किया, मैं कहूंगी नहीं ईश्वर ने कराया। और अगर असफलता मिली तो हमें दुख भी नहीं होगा, हम कहेंगे हमने तो अपना कर्तव्य पूर्ण किया, अब आगे ईश्वर की इच्छा। कर्तव्य में हम पीछे न हटे।
बिल्कुल श्री बहन, लेकिन वही कर्म जब हम कर रहे होते हैं आज के इस दौर में, अगर हम इसको एक हथियार या एक वो बना लेते हैं अपने पास रख लेते हैं कि परमात्मा की करवा रहा है सब कुछ, तो हम जब नेगेटिव भी कर जाते हैं तो हम अपने आप को ये कहने, अपने आप को सोलेस दे सकते हैं कि वो तो परमात्मा ने करवाया था।
नहीं नहीं नहीं, परमात्मा ने नेगेटिव नहीं कराया। कर्म करने की शक्ति हमारे पास है, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये भी कर्म की बहुत बड़ी फिलॉसफी है। तो हम ईश्वर को इसमें दोष नहीं दे, ये भी एक मनुष्य का ज्ञान है जो ईश्वर को दोष दे देता है, समझता भगवान ने दुख दिया। अब भगवान क्यों दुख देगा,
वो तो सुख का सागर है, कितना दुख देना चाहता है पता नहीं, कितना दुख देगा।
यही तो हमारी गलत धारणा है, हम समझते भगवान ने दुख दिया, परंतु परमात्मा कभी दुख नहीं दे सकता है। जो सुख देने वाला है वो दुख नहीं दे सकता है, वो तो सुख दाता है, वो तो दुख हरता है। तो जो दुख हरता है वो दुख कैसे देगा, सुख दाता है तो सुख ही देगा। पर हम अपने कर्मों से अपने आप को खुद ही दुख देते हैं। इसलिए देखिए, बहुत सुंदर ये भी कहावत है कि आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। तो हम अपना ही मित्र अपना ही शत्रु बनते, अपने आप को दुख देते हैं बुरे कर्म करके, अपने आप को सुख देते हैं मित्र बन करके क्योंकि अच्छे कर्म करते हैं। तो ये आत्मा पर निर्भर है
कि आप अपनी जो है, और आप वही हम बार बार कहते हैं कि जो कर्म किया है उसके जिम्मेदार भी आप ही होते हैं, क्योंकि हम कहीं वो ब्लेम गेम जो खेलते रहते हैं, सिचुएशन ऐसी थी, लोगों ने ऐसा किया तो मेरा रिएक्शन ऐसा हुआ, या परमात्मा यही चाहता था, ये जो तीन चीजें फैक्टर्स लेके हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। चलिए बहन, यहाँ एक और सवाल जुड़ता है। एक तो हमने बात की सर्वव्यापी का, उसका आपने कहा कि किस तरह से भाव जो है उसके कारण ये प्रचलित रहा।
कुछ है भावनात्मक बातें, कुछ है सैद्धांतिक बातें। तो भावनात्मक बातों को सैद्धांतिक बातों से मिला दिया है, इसलिए मनुष्य मूझ गया है कि सत्यता क्या है।
बिल्कुल, वो कंफ्यूजन, क्योंकि आज हम उस दौर में हैं कि हमारे पास क्लैरिटी रहे, हम सच को सुनने को और जानने को आतुर हैं, वन विच हैज एक्चुअली हैपेंड, और तभी हम वो सच्चाई के रूप में देखना चाहते हैं, तभी ये जो श्रृंखला हमारी है वो बहुत लोगों के कन्फ्यूजन्स को दूर कर रही है। एक और बात है कि हम जो 84 लाख योनियों से होकर गुजरते हैं, क्योंकि बार बार दिमाग में ये बात रहती है, हमारे इतना ज्यादा ये बिलीफ सिस्टम का एक हिस्सा है। तो एक इनका मेल है कि वो ये कहती है कि मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, बहुत ज्यादा। मैं कितनी बार पेड़ों के बीच में चली जाती हूँ और गले लगकर उनके साथ बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा एहसास रहता है। तो मुझे लगता है कि क्या कभी किसी जन्म में मैं पेड़ रही होंगी, अब क्या ये संभव है?
नहीं, वास्तव में प्रकृति से प्यार रखना ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी तो परमात्मा की रचना है। तो प्रेम करना प्रकृति से, पेड़ पौधों से, नदी से, सागर से, पंच तत्वों से प्रेम रखना, उनको भी हम योगदान देते हैं, वो भी कैसे हमें सुख दे रहे हैं। भारत की संस्कृति में तो पेड़ पौधों को या प्रकृति को तो देवता मानते हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, सब देवता। देवता माना दाता, परोपकारी है ये प्रकृति, परोपकारी है, दाता बन करके देती है। तो मनुष्य भी ऐसा परोपकारी बने, इसलिए वो गीत गाते ना, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपनों का दूजो को जो दे वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। तो मानो पेड़ पौधे ये प्रकृति दाता के रूप में, ईश्वर का स्वरूप कई मजे से मानते हैं, आत्मा भी दाता बन जाए वो ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। तो ये भावनात्मक स्थिति बहुत ऊंची है, बाकी कोई आत्मा उनमें कोई जन्म नहीं लेती, प्रकृति की चेतनता अपनी है, पेड़ पौधों में अपनी प्रकृति की चेतनता, उसमें मनुष्य आत्मा नहीं जाती। और हम शिव परमात्मा ने हमें ये भी समझाया है कि मनुष्य आत्मा को मनुष्य चोला ही मिलता है। ये जो कुत्ता बिल्ली या जो कुछ भी कहते हैं, 84 लाख योनि कहते हैं, वास्तव में ये भी हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि आगे चल करके घोर कलयुग आएगा, लोग बहुत पाप करेंगे, इसलिए घोर कलयुग में इंसान इतना पाप करेगा तो थोड़ा सा डराया जाए कि इतना पाप मत करो, नहीं तो आपको ये योनि में जाना पड़ेगा। तो वास्तव में भावना ये थी कि इंसान पाप न करे, परंतु आज इंसान कहाँ पाप से डर रहा है, ये भले कहते हैं लेकिन जितना पाप करता जा रहा आज इंसान, पहले तो कभी नहीं किया। तो इसका ये होना चाहिए कि इंसान घटने चाहिए, जानवर बढ़ने चाहिए, लेकिन हम तो इसके विपरीत देख रहे हैं, जानवरों की संख्या कम हो रही है और इंसान बढ़ रहे हैं, शेर कम हो रहे हैं, चीते कम हो रहे हैं, कई ऐसी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है और इंसानों की तो भरमार है। तो हम और ही चाहते हैं कि जनसंख्या कम हो, संख्या कम हो, फिर तो इंसान खत्म ही हो जाना चाहिए, सिर्फ जानवर ही होने चाहिए, क्योंकि सब पाप के वशीभूत तो है ही है। लेकिन वास्तव में परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य आत्मा को मनुष्य चोला ही मिलता है। आपने देखा होगा कईयों को जैसे हिप्नोटिक रिग्रेशन में ले जाते हैं, किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि वो कुत्ता था या बिल्ली थी या कोई अन्य जानवर था, मनुष्य की ही स्थिति थी, मनुष्य ही बताते हैं। क्योंकि जैसे मनुष्य आत्मा हम कहते तो उसे मनुष्य के ही संस्कार हैं, तो मनुष्य का ही चोला उसको चाहिए, तभी तो उसी चोले में वो कर्म कर सकेगा। इसलिए मनुष्य आत्मा को मनुष्य चोला ही मिलता है, ये पहले हमें परमात्मा ने बहुत सुंदर रूप से समझ दी है।
एक सवाल यहीं पे ले लेते हैं कि अगर कोई इंसान संसार छोड़ के चला जाता है, जो डेथ की बात हम कर रहे हैं, तो अगर उसके फैमिली वाले उसके लिए ध्यान योग करके पूजा कराएं तो क्या उसका रास्ता क्लियर हो जाता है, क्या उनकी आत्मा को शांति मिलती है? ये मधु प्रजापति जी कोलकाता से पूछ रही हैं, कई सारे उनके सवाल हैं और वो अपनी मम्मी के बिहाफ पे बोल रही हैं, क्योंकि जो रोज देखती
हैं। जरूर, हम मानते हैं कि अगर हम ऐसी भावना रखते हैं, उनके प्रति शांति का दान करते हैं, तो उस आत्मा तक अवश्य पहुंचता है, क्योंकि परमात्मा भावना का भाड़ा तो देता है। जैसी जैसी भावना हम रखते हैं उसकी उसका भाड़ा हमें अवश्य मिलता है।
नहीं तो इनका भाव, इनका सवाल यह है कि वो आत्मा, अब अभी हमने जो कुछ कड़ियों पहले हमने जब बात की थी तो ये बात की थी कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो ज्यादातर ये होता है कि दूसरा शरीर जो है तैयार ही है, तो वो आत्मा कहीं यहाँ नहीं है कि उसे मुक्ति चाहिए किसी चीज से। लेकिन कुछ आत्माएं आपने कहा था कि जिनको जो भटकने लगती हैं, फिर भटक रही होती हैं, तो मुक्ति और मोक्ष, क्योंकि यहाँ मुक्ति की बात भी हो कर रहे हैं।
ये बात दूसरी है कि शिव परमात्मा ने हमें ये भी समझाया है कि सदा के लिए मोक्ष ये किसी भी आत्मा को नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी बात हमें परमात्मा ने सिद्ध कर बताई है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। अब मोक्ष मिला माना कहीं वो ज्योति में समा गई, लीन हो गई, तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया। अब आत्मा का अस्तित्व तो खत्म होता नहीं है, फिर अगले साइकिल में उसी आत्मा को वापस तो आना ही है, तो इसीलिए सदा के लिए मोक्ष नहीं मिलता। बाकी ये जरूर है कि साइकिल के अंत में सभी आत्माएं वापस परम धाम जाती है, अर्थात मुक्ति धाम में सभी आत्माओं को जाना है। ये हर आत्मा का अधिकार है अपने घर में वापस जाना। फिर उसके बाद अगले साइकिल में आत्मा अपने अपने समय पर आती है, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि भी हो रही है, क्योंकि अभी तक आत्माएं सृष्टि मंच पर आ रही है। कोई तो सतयुग से आई, वो त्रेता में भी आई, कोई फिर त्रेता में आई, वो फिर द्वापुर में भी आई, कोई द्वापुर में आई, वो फिर कलयुग में भी आई, फिर कोई कलयुग में भी आई। अभी भी अनेक आत्माएं अवतरित हो ही रही है, परम धाम से आ ही रही है।
तभी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज,
तभी तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है।
श्रीमान, तो यहाँ एक और सवाल जो जुड़ जाता है वो ये कि जैसे कुछ आत्माएं तो एकदम से जब शरीर धारण करती हैं, जो भटक रही आत्माएं, क्योंकि अब जो पीछे रह जाते हैं लोग, उनके लिए बहुत परेशानी का की वजह रहती है कि अब हम क्या करें उनको मोक्ष के लिए। चलिए मोक्ष तो हमें बात समझ में आ गई, लेकिन उनको शरीर मिल जाए या वो दूसरे शरीर में चली जाए, तो ये
बस हम तो उनको शांति का ही दान दे। हम ये क्यों सोचें कि वो भटक रही है या कुछ, हम उनको शांति का दान दे और अवश्य शुभ भावना, शुभ कामना उस आत्मा के प्रति रखे, तो क्यों वो आत्मा भटके।
तो ये रिचुअल, ये योग जो हम उस आत्मा के लिए करते हैं जो चली गई, वो किसको मिलता है उसका भाड़ा,
उस हमें मिलता है या उसको मिलता है? उस आत्मा को मिलता है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो भी जैसी भावना रखता है वो भावना निष्फल नहीं जाती। और हमने भी जो कर्म किया वो पुण्य तो बना ना, क्यों नहीं, तो हमें भी मिलेगा, उस आत्मा को भी मिलेगा। ये जरूर है, परंतु ये भी हम मानते हैं कि हर एक आत्मा को अपने कर्म अनुसार फल मिलता, ये भी है। मनुष्य ने जो अपने हाथ से किया कर्म वही उस आत्मा के साथ जाता है। इसलिए हम तो ये कहते हैं जीते जी हम श्रेष्ठ कर्म कर ले वो हमारे साथ जाएंगे। हम ये न सोचे मेरे मरने के बाद फलाने करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो बातें न सोच करके हम जो करेंगे हम ही पाएंगे, ये सोच करके हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं।
बिल्कुल। एक इन्हीं का एक और सवाल है कि योग करने से बाबा का साक्षात्कार कैसे होता है और अनुभव जो होता है वो कैसा होता है?
वास्तव में हम लोग कहते हैं साक्षात्कार ये भी एक गॉडली गिफ्ट है। अगर परमात्मा वो गिफ्ट हमें देते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम ध्यान करेंगे, योग करेंगे तो हमें साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होना ये कोई हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये एक गॉडली गिफ्ट है। जैसे किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, उससे मांगा तो नहीं ना, लेकिन दूसरे ने उसे वो गिफ्ट दी, तो परमात्मा का या ज्योति का या अपने इष्ट का साक्षात्कार ये एक गॉडली गिफ्ट के रूप में है। बाकी हाँ, हम ये जरूर मानते हैं जो पुरुषार्थ है हमारा वो आंतरिक है। आत्मा को कैसे शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए, विकारों से मुक्त करे, ये जरूर पुरुषार्थ हम करें। बाकी साक्षात्कार की इच्छा रखने से साक्षात्कार होगा ऐसी बात नहीं है, तो ये तो गॉडली गिफ्ट है।
इनफैक्ट यहाँ ये जो हम अनुभव की मीराबाई की बात हम कर रहे थे, या कई सारे हम महात्माओं या गुरुओं की बात करें जिन्हें साक्षात्कार हुआ, उन गॉड्स का,
उनका ये रोल था,
उनका इष्ट देवताओं का जिनको वो पूजा करते थे,
उनका ये रोल था। उन्होंने बहुत नवधा भक्ति की, तो जैसे उनको थोड़े समय का साक्षात्कार हुआ।
तो वो साक्षात्कार किसका है? कोई अगर कोई कहता है कि मुझे शिरडी के साईं बाबा का हो रहा है, कोई ये कहता है कि मुझे माता का साक्षात्कार हो रहा है, तो उनका अनुभव तो
नहीं, लेकिन शिव बाबा ने हमें ये भी बताया है कि जो भी साक्षात्कार होते हैं हर एक भक्त को अपने इष्ट के, वो साक्षात्कार कराने वाला शिव बाबा ही है। परंतु क्योंकि उसके अंदर वो भावना है उस इष्ट में, तो उसी का साक्षात्कार शिव बाबा ही कराते
हैं।
परमात्मा एक ही है जिसके पास साक्षात्कार कराने की चाबी है।
बिल्कुल, भावना का आपने कहा कि वो उसका भाड़ा तो देता ही है।
परंतु इसमें ये भी हम जोड़ते हैं कि जो जो जिसमें भावना रखता है उसका भावना का भाड़ा जरूर मिलता है। इसलिए कहावत है कि जो भूतों के उपासक है वो भूतों को प्राप्त होते, जो देवों के उपासक है वो देवों को प्राप्त होते, लेकिन जो परमात्मा के उपासक है वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसलिए परमात्मा की उपासना, उनकी याद, ये सबसे श्रेष्ठ याद है। क्योंकि जिन देवों को भी हम याद करते हैं उन देवों ने भी उसको याद कर देव पद को प्राप्त किया, ये हम मानते हैं।
बिल्कुल। और एक हम चलते चलते एक सवाल जरूर और लेना चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि व्हाट हैपन्स विद अस आफ्टर डेथ, मेडिटेशन अटैचेस अस टू गॉड, बट व्हाट लाइफ आफ्टर डेथ। अगेन दिस फियर ऑफ डेथ इज सो मच देयर, यू नो। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम क्या अपने पास्ट लाइफ में, जो 84 लाइफ कहा जा रहा है कि इन पूरे युगों में हमने ले चुके हैं, 84 लाइफ हमने लेनी है, क्या हम उनके बारे में जान सकते हैं।
वास्तव में मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु की जैसी कोई चीज है ही नहीं। वास्तव में देखा जाए ये तो चोला बदलना है। अब हम चोला बदलते हैं तो उसमें डर थोड़ी है, कोई दुखी थोड़ी होते हैं। लेकिन इसी प्रकार ये वस्त्र भी तो चोला ही है ना। ये चोला शरीर आत्मा का एक वस्त्र है, तो शरीर छोड़ना माना मृत्यु, शरीर धारण करना माना जन्म। तो वस्त्र बदलना ये तो एक कॉमन चीज है वैसे भी। और पुराना वस्त्र हो जाए और नया वस्त्र हमें दिखाई दे रहा है तो हमें तो सुख होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम ये नया वस्त्र धारण करेंगे, पुराने को छोड़ेंगे। इसलिए मृत्यु वास्तव में एक पड़ाव है।
इनफैक्ट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू
एंड, इट्स नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। ये अगर हमें मालूम होना चाहिए ना, फॉरवर्ड टू माना ये भी नहीं कि हम सोचे कि बस हमें ये चोला छोड़ना है, जब समय आएगा तो
अपने आप छूटेगा। बिल्कुल शीलू बहन, आज की इस पूरी बातचीत के लिए कि जिस तरह से पूरा हमने देखा कि युगों की भी बात हमने की कि किस तरह से जो समय का सच है वो लेकर, और फिर सर्वव्यापी होने का जो भाव है उसको भाव रूप में अगर हम देखते हैं तो क्या वो परिवर्तन हमारे जीवन में ला सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन
Shanti.